उनको इल्म अकल हासिल नहीं है, इसलिए वो आपस में एक दूसरे की न मदद कर सकती हैं और न एक दूसरे कुछ बता सकती हैं। जानवर जानवर को नहीं बता सकता, अपने तजुर्बात नहीं बता सकता, अपने मुशाहदात का जिक्र नहीं कर सकता, और इंसान पैदा और मखलूक पैदा होने के बाद ये दुनिया को देखती है। जो भी मखलूक हो, इंसान पैदा होने के बाद दुनिया को देखता है, वरना माँ के पेट में तो देखता नहीं है कि दुनिया ऐसी जो कुछ दुनिया है उसको नज़र आती है, माँ के पेट ही के अंदर की नज़र आती है। अब जो बाहर आता है और उसकी आँखें खुलती हैं, देखता है, तो वैसी दुनिया उसको नज़र आती है, वो तनवु कस्म की और तरह की हैं। तो उसको उन चीज़ों को देख कर उसको हैरानी होती है इंसान, और उससे वो सीखता है। जज्ब करने की सलाहियत अल्लाह ने इंसान में रखी है। जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है तो रोशनाई को जज्ब कर लेता है, तो इंसान का मामला ऐसा है कि वो जो कुछ भी देखता है या सुनता है उसको जज्ब करता है। इसी से इंसान की तरबियत होती है। और आप देखिए, आप जो ज़बान बोलते हैं या हम जो बोलते हैं, वो हमने अपनी मादरी ज़बान पढ़ के नहीं सीखी है, सुन के सीखी है। जिस तरह सुना बोलों को बोलते हुए जिस लफ्ज को जहाँ पर इस्तेमाल करते देखा, उनले पानी पीना, पानी के साथ हम पीने के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें हमने ये सुना कि पानी पानी इस्तेमाल करने के लिए पीने के लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने बिल्कुल उसकी नकल उतार ली। तो हमारी ज़िंदगी सारी नकल है हतमन। जो कुछ हम करते हैं, अगर कि हम ये हमें धोखा होता है कि हमने खुद से ये बात की है, ये धोखा है, ये सब नकल है हमारी। और जब हमारा सारा निज़ाम नकल पर चल रहा है, तो हमारे लिए मुनासिब ये होता है कि हम अच्छी चीज़ों की नकल करें। तो अच्छी चीज़ों की नकल कैसे होगी? अच्छे लोगों में रहने से होती है। तो इसीलिए इस्लाम में इज्तिमाई निज़ाम, मिलजुल कर रहने के निज़ाम बहुत उसको अहमियत दी गई है। मस्जिद में मिलजुल कर इबादत करते हैं और इसका बहुत सवाब बताया गया है। अकेले नमाज पढ़ने के मुकाबले में इकट्ठा नमाज पढ़ने का बड़ा सवाब बताया गया है। मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब बहुत बताया गया है, ताकि हम मिलजुल कर इबादत करें। ऐसा और जो कुछ काम हम करते हैं, मिलजुल कर करते हैं, और जहाँ पर मिलना जुलना हमारा ज़्यादा नहीं होता, वहाँ हमें ताकीद आई कि मिलजुल करो। फसल रमज़ान है, रमज़ान में हम मिलजुल कर रोज़ा रखते हैं, यानी इकट्ठा होते हैं, इफ्तार में इकट्ठा होते हैं, और दिन में भी ऐसे मौक़े होते हैं कि इकट्ठा होते हैं और इफ्तार करते देखते हैं लोगों को, खुद भी हमारा इफ्तार लोग देखते हैं। तो इस्लाम में इस चीज़ को रखा गया है, और इससे बड़ी हिकमत है कि हम जब अच्छी चीज़ें देखेंगे तो हम उसको इख्तियार कर लेंगे। इसलिए हमारी फितरत में जज्ब करने की सलाहियत है, जो देखा जो सुना। इसलिए आप देखेंगे कि जो लोग दीनी माहौल में रहते हैं वो दीनदार हो जाते हैं, और जो दुनियावी माहौल में रहते हैं वो दुनियादार हो जाते हैं। तो इसीलिए बताया गया जिसमें में अच्छी जगह जो है मस्जिद है। मस्जिद में आदमी को अच्छी बात मिलेगी, मस्जिद में जितना वक्त गुजरेगा वो अच्छी चीज़ देखेगा, अच्छी चीज़ सुनेगा, तो उसमें अच्छी चीज़ जज्ब होगी। इसलिए मस्जिद को बहुत अहमियत दी गई है। तो और हमारी आम जिंदगी में भी हमको इस बात की ताकीद की गई है, ताकि एक मोमिन दूसरे मोमिन से मिलने जाए, सिर्फ ईमान के रिश्ते से जाए, तो अल्लाह ताला के यहाँ उसकी बड़ी कीमत है, बहुत अजर है। तो वह इज्तमाही जो हमारी ज़िंदगी बनी है, अल्लाह ताला चाहता है कि वो अल्लाह की इताअत की ज़िंदगी हो। तो अल्लाह ताला की इताअत हम उसी वक्त हमें पैदा होगी कि जब हम अल्लाह की इताअत करने वालों को देखें और सुने। اب نماز کے متعلق آتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتم انی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم دیکھتے ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں، یعنی میری نماز مجھے نماز پڑھتے دیکھو اور اس سے سیکھو، احساس آئیے کہ مجھ کو میں نماز جس طرح پڑھ رہا ہوں اس کو دیکھو اور اس سے سیکھو، اور جو چیزیں ہم دیکھ کر اور سن کر سیکھتے ہیں براہ راست وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور جو ہم کتاب کے ذریعے سے یا تعلیم کے ذریعے حاصل کرتے ہیں وہ نمبر دو کی ہوتی ہیں۔ تو لیکن یہ کہ انسان پوری زندگی وہ صرف دیکھ کر اور سن کر نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے کہ جو اس دیکھتا ہے یا سنتا ہے وہ محدود ہے، زیادہ ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہم کو علم عطا فرمایا۔ علم کیا ہے؟ دوسروں کی باتیں ہم تک ہمیں معلوم ہو جائیں، جو دوسروں کے تجربے ہیں، جو دوسروں کے مشاہدات ہیں وہ ہم کو معلوم ہو جاتے ہیں بغیر دیکھے۔ اب ہم مثلا جس محلے میں رہتے ہیں تو اسی محلے کی چیزیں ہم دیکھیں گے، وہی چیزیں ہمارے اس میں آئیں گی نظر میں، لیکن ہم عرب کی چیزیں نہیں جان سکتے، اس طرح ہم ماضی کی تاریخ ماضی کی چیزیں نہیں جان سکتے، ہمارے دادا کیا کرتے تھے، باپ کیا کرتے تھے نہیں معلوم، دیکھا نہیں۔ تو علم یہ ہے کہ دوسروں کی چیزیں ہمیں معلوم ہو جائیں، یہ علم ہے، اور یہ جانوروں کو نہیں حاصل ہے، تو جانوروں کو علم بھی حاصل نہیں، عقل بھی حاصل نہیں، اور علم عقل جو ہے وہ علم سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے، اور علم کیا ہے؟ دوسروں کی باتیں معلوم ہو جانا۔ تو اس طریقے سے بڑی وسعت پیدا ہو جاتی ہے ہماری معلومات میں، اور یہ معلومات حاصل ہوتی ہیں یوں کتابوں کے ذریعے سے، دوسرے ذریعوں سے، اس سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری عقل ہم کو ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ یہ اچھی بات ہے جو ہوئی تھی، کسی نے کی تھی، ایک بات اچھی ہے تو ہم اس کو اختیار کریں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ انسان بہت بہت اونچی مخلوق بن جاتا ہے، اسی لیے انسان کا سفر مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، فرمایا قرآن مجید میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کے اولاد کو بہت معزز بنایا ہے، عزت دی ہے، وہ عزت یہی ہے کہ انسان اگر بلندی اختیار کرنا شروع کرے تو دوسروں ہی سے حاصل کرے گا، اچھی باتیں دوسروں ہی سے معلوم ہوں گی کہ کون سا کام کس طرح کرنا چاہیے، اس کے کیا فائدے ہیں اور کس طرح وہ فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں، تو اس سے انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور بہت معزز مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اب تو نبی تو آئے گا نہیں، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، لیکن آپ کی نبوت ایسی ہے کہ اس میں زندگی کی ساری اچھائیاں آ گئیں اور علم کے ذریعے سے وہ محفوظ ہو گئیں، اچھائیاں آپ کے حیات طیبہ ایسی ہے، آپ کے اقوال اور آپ کے اعمال، انسان کی جو بہتر سے بہتر چیزیں عادتیں ہیں اور ان کے بہتر سے بہتر جو معاملات ہیں سب آپ کی حیات طیبہ میں آ گئی ہیں۔ انسان کامل یعنی انسان جتنا بہتر ہو سکتا ہے، اس کا جتنا نیک اور اچھا ہو سکتا ہے، جتنا معقول اور صحیح ہو سکتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال اعلیٰ مثال ہے، اور آپ کی حیات طیبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بنائی گئی اور فرمایا گیا کہ آپ کو ہم نے نمونہ بنایا، یعنی جن کو دیکھ کر آدمی سیکھے، نمونہ اسی کو کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر آپ چیز کو سمجھیں کہ یہ چیز ایسی ہوتی ہے، نمونہ کہتے ہی اس کو ہیں، تو آپ کے حیات طیبہ کو نمونہ بنایا گیا۔ تو اس طریقے سے اور وہ علم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور ہم ظاہر ہے کہ 1400 سال پہلے کی بات ہم دیکھ نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، تو علم اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ذریعہ ہم کو عطا کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر چیزوں سے ہم واقف ہو سکتے ہیں، ہم کو ملتی ہیں۔ تو اس طریقے سے دو ذریعے بہت اہم ہیں، ایک ذریعہ علم ہے और दूसरा जरिया सोबत है। सोबत यानी किसी का साथ रहना, किसी माहौल में रहना, ये सोबत है, किसी के साथ रहना। और इल्म और सोहबत से ही सब कुछ हासिल हुआ है। सहाबे कराम को क्या कैसे हासिल हुआ? सोहबत से हासिल हुआ। आपको देखा, आपको सुना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देखा और सुना और उससे जज कर लिया, और तो इतने बड़े ऊँचे दर्जे पहुँच गया कि नबी के बाद उनका दर्जा है। इसलिए कि उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर, उनकी बात सुनकर वो मकाम हासिल हो गया जो बेहतर बेहतर मकाम हो सकता है। तो वो चीज़ तो हमको हासिल नहीं हो सकती जो सहाबे कराम को हासिल हुई, लेकिन उसके बाद की चीज़ हासिल हो सकती है, उसके बाद का दर्जा हम हासिल कर सकते हैं। कि हमारे पास हुज़ूर सल्लम के हयात तैयबा के भी हालात हैं और सहाबे कराम के भी हालात हैं, दोनों को देख कर हम सीख सकते हैं और इल्म के ज़रिए से हमको चीज़ हासिल हुई। तो इल्म तो कहते हैं मालूमात को, मालूम होना, कोई चीज़ भी मालूम हो वो उसका इल्म है। तो दीन इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। दुनिया के मामला तो हमें आसानी से मालूम हो जाते हैं, लेकिन बाजारों में जाते हैं और मुख्तलिफ मौक़ों पर तो बहुत आसानी से, लेकिन ये चीज़ जो हमको आखिरत में काम देगी, हमारी नजात का ज़रिया होगी, अल्लाह ताला के खुशनुदी के हुसूल का ज़रिया होगी, वो हमें इल्म और सोबत से हासिल हो। तो हमें इसकी फिक्र, हमें हर एक फिक्र से करनी चाहिए कि उसकी सोबत भी देखो और उसकी मालूमात भी वो हों कि जिनसे वो अपनी आखिरत बना सके और आखिरत में कामयाबी हासिल करे। और इसी के लिए सारे मजालिस हैं, इल्म के लिए मजालिस हैं और बुज़ुर्ग लोग जो हैं उनकी सोहबतें हैं। इसलिए पहले ज़माने में बुज़ुर्गों का पूरा निज़ाम था, जगह जगह बुज़ुर्ग होते थे और उनके ज़रिए से लोगों के अखलाक और आमाल दुरुस्त होते थे। वो चीज़ अब कम होती चली जा रही है, बहुत कम हो गई है, लेकिन उसकी तलाफी इल्म से हो सकती है। वो जो कमी उधर हो रही है तो इल्म से, इल्म में ख़ास तौर पर जो बड़ी शख्सियतें गुजरी हैं दीनी लिहाज से, बुज़ुर्ग शख्सियतें, उनकी नसीहतें, उनकी बातें, उनके हालात, वो एक तरह से सोहबत ही कायम मुकाम है। हमें उनकी बराबर सोहबत तो नहीं मिली, लेकिन इल्म के ज़रिए से उनके हमें वो फ़ायदा हासिल हो सकता है जो सोहबत से फ़ायदा हासिल होता है। इसलिए हमें इधर तवज्जो करनी चाहिए कि हमारी मालूमात दीनी मालूमात भी बेहतर होती रहें और उसके साथ साथ हमको ऐसा माहौल मिले, इस माहौल से हम तरक्की करें और बेहतरी की तरफ जाएं। इसलिए कि आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने शैतान को जो इस बात की इजाज़त दे दी कि वो बहकाए लोगों को, और शैतान की हाल कैफियत ये है कि वो छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। हजम का मसला उसका नहीं है, मादी चीज़ें जो हैं, जिस्म वाली चीज़ें हैं, इन्हें इंसान और जानवर, इनके तो जिस्म होते हैं, ये छोटे बड़े नहीं हो सकते, लेकिन जिन्नात और शयातीन ये हवा की तरह हैं, वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। शैतान को तो ये भी हैसियत आती है कि वह इंसान के जिस्म के अंदर चला जाता है, कल्ब तक चला जाता है, और वो उसकी होशियारी है, क्योंकि इंसान का वो दुश्मन है बहुत बड़ा, तो वो ये करता है कि इंसान के ख्याल ही को बढ़ा देता है। वो यूँ तो नहीं सिखा सकता, ही नहीं कह सकता नमाज ना पढ़ो, रोज़ा न रखो, कहेगा सिखा नहीं। तो वो ये करता है कि जो इंसान की ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश आदमी को पसंद वाली चीज़ की होती है, उस ख्वाहिश को बढ़ा देता है, और या उसमें जो जज्बा होता है उस जज्बे को बढ़ा देता है। मतलब ये कि नमाज पढ़ने का वक्त हो रहा है और आदमी में कुछ कसल है, सोचता है कि नमाज पढ़नी है, उठे नमाज पढ़ें, तो अर्शद है फायदा उठाएगा कि इनमें कसल है, तो हाँ ख्याल में उसके ईटा चीज़ डालता है यहाँ क्या जल्दी है पढ़ लेना बहुत वक्त है, और इस तरीके से उसको बहला देगा। आदमी को पता नहीं चलेगा कि शैतानों को बहका रहा है, और समझेगा कि हमारा ख्याल है, तो इससे इंसान फ़ायदा उठाता है। तो ये चीज़ें जो हैं दुनिया में बढ़ती चली जा रही है, और मुसलमानों में बहुत ज़्यादा अब अल्लाह ताला की नाफरमानी वाली बातें बहुत फैल गई हैं। आप खुद देखते हैं, आप बड़े शहर में रहते हैं, कि इंसान कितना गिरता चला जा रहा है अखलाकी और दीनी लिहाज से, और कितनी बुराइयाँ लोगों में आम होती जा रही हैं, और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ज़ाहिर उसका असर पड़ता है, वो जो सोहबत का असर है, जैसे सोहबत का हमने जिक्र किया, इंसान जो देखता है उसी को जज्ब करता है, तो ये बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं, और नई नस्ल के लिए तो और ज़्यादा मुझे नहीं है। इसलिए आप हजरात जो हैं, वो तो ज़ाहिर है कि एक मकाम तक पहुँच गए हैं, दीन से ताल्लुक़ हुआ, आप में दीनी जज्बा है, लेकिन आइंदा आने वाली नस्लों की फ़िक्र की ज़रूरत है। इसलिए कि हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं, माहौल इतना बिगड़ता जा रहा है, या कि जो बातें आप में और हम में हैं, जो टूटी फूटी बातें हैं, तो आने वाली नस्लों को वो चीज़ें भी नहीं मिलेंगी देखने को, और ज़ाहिर है जो बुराइयों को ज़्यादा देखेंगे तो बुराई सीख लेंगे, और ऐसे ज़राए पैदा हो गए हैं, जानते हैं, मोबाइल आ गया है और ये इंटरनेट है, सब है, जो इसको आप देखिए तो सिवाय बुराई सिखाने का उसमें अच्छी बात सिखाने का नहीं है। तो जो आजमाइश तो नई नस्ल को पेश आ रही है, वो आप नहीं पेश आई, आपको उससे कम पेश आई, और अल्हम्दुलिल्लाह आप दीन में लग गए, आपको सोबत मिली अच्छी और बातें अच्छी मालूम हुई, लेकिन इसे आइंदा की फिक्र की बड़ी ज़रूरत है अपने लिए भी। हमको भी अगर खुदा न खासा बुरा माहौल मिले तो हमारे बुराई की तरफ मैदान बढ़ जाएगा, लेकिन आपसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा अब ज़रूरत इस बात की है कि हम नई नस्ल की फिक्र करें, अपने औलाद की फिक्र, अपने भतीजों और भाइयों की फिक्र, कि उनको जो हालात पेश आ रहे हैं और जो चीज़ें उनके सामने आ रही हैं, वो उनको बर्बाद करने वाली है, उनको ख़राब करने वाली है। और आप तारीख में देखिए तो ऐसा हुआ है कि वली है लेकिन उसका बेटा फाजिर, ऐसा भी हुआ है। हसन अलैहिस्सलाम का बेटा आप जानते हैं कि हसन अलैहिस्सलाम की बात भी नहीं मानी उसने और तबाह हो गया। कैसे हुआ, हसनू का बेटा था और फिर उसमें ये बात कैसे पैदा हुई, कैसे पैदा हुई? हसनू की सोबत में रहा नहीं होगा, इधर उधर दोस्तों में और तफरीहात में और में रहा होगा, तो जिसके जिस माहौल में ज़्यादा रहेगा उस माहौल से निकलेगा, वरना हसनू का बेटा मोमिन क्यों नहीं होगा, होगा अगर वो उन्हीं के साथ रहता, उनकी बात मानता तो वो मोमिन होता, लेकिन उसको सोबत ऐसी मिली होगी कि वो बर्बाद हो गया, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो गई, हालांकि बाप नबी। तो इस तरह सोहबत जो है वो ख़राब कर देती है। आइंदा आने वाली नस्लों की फिक्र की ज़रूरत होती है। अगर ये आदमी चाहता है कि वो कम से कम उसी की तरह हो, तो फिर उसको वैसे ही माहौल मिलना चाहिए कि इससे वो भला बने। और ये इसमें सबसे ज़्यादा मौसर चीज़ होती है सोहबत में, वो दावत काम है। दावत काम में ये होता है कि आदमी रहन जब उसमें लगता है और उसकी फिक्र होती है, तो उससे उसकी तबीयत भी अच्छा असर पड़ता है। मसलन आप किसी से अगर अच्छी बात कहें तो भाई देखो नेक बनो, फला आदत जो ख़राब है वो छोड़ दो, तो आप में अगर वो आदत होगी तो आप उसे छोड़ देंगे और तब उससे कहेंगे। आदमी किसी को नसीहत करता है तो अपने फिक्र करने के बाद करता है। और एक बुज़ुर्ग का किस्सा है जब एक औरत आई अपने उनसे कहा कि हमारा ये बेटा है, ये बहुत मिठाई खाता है, बहुत इसमें मिठाई का बहुत इसका शौक बढ़ा हुआ है, आप इसको नसीहत कर दीजिए। और उनका कलाम है और कल क्यों बुला रहे नसीहत करके, तो पूछा कि दूसरे दिन गया तो नसीहत की, क्यों अंकल ने भाई हम भी मिठाई के शौकीन ज़्यादा थे, हमने कहा नसीहत हम कैसे करें, हम खुद मिठाई ज़्यादा खाते हैं, तो हमने पहले मिठाई छोड़ खाना कब की छोड़ा, तो अब नसीहत हमारी कारगर होगी। तो ये दावत का काम जो है ये भी इंसान को बनाता है कि जब वो दूसरों को नसीहत करेगा दूसरों को, तो खुद भी उसको एहसास होगा कि हमको भी अच्छा बनना चाहिए, नसीहत करना चाहिए। तो इस दावत काम में हिफाजत बहुत है, आदमी में वो आदमी नेकी की तरफ बढ़ता है। आपने देखा होगा कि तबलीगी काम में जो लोग लगते हैं उनमें बड़ी तब्दीली हो जाती है, वो अगर वो उनके पहले उनमें बेख्याली बहुत थी दीन के मामले में, तो बेख्याली दूर हो जाती है और वो अच्छे बन जाते हैं। तो कहने की बात ये है कि जो हालात इस वक्त दुनिया के हैं और हमारे मुल्क के भी हैं और बड़े शहरों में वो ज़्यादा हैं, इसलिए इसकी बड़ी फिक्र की ज़रूरत है, तो कि लोगों को बुरी सोहबत से बचाया जाए। बुरी सोहबत यानी बुरे हालात, इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। इनसे बचे बगैर आदमी अपने मेयार को बाकी नहीं रख सकता, अपने को अच्छा नहीं रख सकता। इसलिए कि जब आदमी किसी चीज़ को बार बार देखता है तो उसके दिल में उतर जाती है, और अगर बुरी चीज़ को देखता है तो वो बुराई उसके नज़दीक उतनी बुरी बात नहीं रहती। वो बुरी कहता है ये तो होता ही है, क्या है इसमें, क्या ख़ास बात है। यहीं से फिर वो खराबी शुरू हो जाती है। जब बुराई को आदमी हल्का समझेगा, मामूली समझेगा, तो उस बुराई से बचने का शौक उसे नहीं पैदा होगा। और ये कब होता है, जब हम बुराई को बहुत देखें। तो आप लोग तो इतने बड़े शहर में रहते हैं, आप देखते हैं कि बुराइयाँ कितनी आम हो गई हैं और किस हद तक बुराइयाँ बढ़ गई हैं। इस वक्त मुसलमानों के हालात इस लिहाज से बहुत ख़राब हो रहे हैं पूरी दुनिया में। और कुरान मजीद से मालूम होता है, अपने साफ साफ आया है कि जब हालात ख़राब होते हैं अखलाकी लिहाज से और दीनी लिहाज से, तो अल्लाह ताला को नापसंद होता है, वो नापसंदगी होती है। और जो उसकी नापसंदगी होती है तो एक तो बरकत उड़ जाती है, बेबरकती शुरू हो जाती है, फिर दूसरे ये हवादिस आफात और परेशानियाँ, ये चीज़ें आदमी को लायक होती हैं। बात यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी रहीम और करीम है, वो हमको बहुत से खतरात से बचाता है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। हम खतरात में, ज़िंदगी ऐसी है कि इसमें हम खतरात में घिरे हुए हैं। अब आपने ये खुद ये जो ये सफ़र हैं और दूसरे हैं, ये कैसे कैसे मौके ऐसे आते हैं कि आदमी को खतरा आ जाता है, पेश आ जाता है, लेकिन अल्लाह ताला बराबर बचाता है, इंसानों को बराबर बचाते रहता है तकलीफ़ों से और परेशानियों से। लेकिन जब लोगों में बुराइयाँ बढ़ जाती हैं तो अल्लाह ताला की रहमत भी उसी हिसाब से कम हो जाती है। और अल्लाह ताला ने फरमाया भी कुरान मजीद में कि तुमको जो मुसीबत पेश आती है वो तुम्हारी कीवे का नतीजा होती है। वहाँ असाबक में मुसीबत हैं तो वहाँ कसब तहजीब हूँ वही आफून कसर, तुमको जो मुसीबत पेश आती है वो तुम्हारी कीवे का नतीजा होती है। यानी गोया कि अल्लाह ताला ने उनको ये बताया कि हमें दुनियावी हालात जो ख़राब पेश आते हैं वो भी हमारी गलतियों की वजह से पेश आते हैं, हमारी ही कोताहियाँ होती हैं या एक नाफरमानियाँ होती हैं अल्लाह ताला की, कि उसकी वजह से हमको वो खतरात पेश आ जाते हैं। खतरात तो ऐसे ज़िंदगी में ज़िंदगी घिरी हुई है खतरात से कि अल्लाह ताला के अंदर बचाए तो इंसान जिंदा रहना मुश्किल है, लेकिन इंसान पूरी जिंदगी माशाल्लाह गुजारता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कहाँ कहाँ अल्लाह ने उसको बचाया और कैसे कैसे खतरा से बचाया। तो वो अल्लाह ताला की रहमत तो अपने नेक बंदों के साथ ज़्यादा होती है और नाफरमान बंदों के साथ भी होती है रहमत, लेकिन जाहिर है कि उसी हिसाब से कम होती है। अल्लाह ताला उसको खतरे में पढ़ने देता है कि भूख तो अच्छा तुमको हमारा हमसे ताल्लुक नहीं है तो फिर तुम भुगतो जो कुछ कर सकते हो। और वाकई अल्लाह ने वो सूरह काह में बताया, दो तीन वाकयात बताए हैं कि अल्लाह ताला किस तरह लोगों को खतरा से बचाता है। उसमें बहन है कि गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र दरिया पार कर रहे थे तो किश्ती वाला जो लोगों को था किराया पकड़ता होगा उनको बिठाया, किश्ती नई थी उनको उतार दिया और उसने शायद पैसे वैसे भी नहीं लिए, देख करके ये अच्छे लोग हैं, उन्होंने खिज़र ने किश्ती का एक तख्ता ढीला कर दिया कि उससे पानी आने लगा किश्ती के अंदर हल्का हल्का, किश्ती ख़राब हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या कह रहे उन्होंने, इसने तो एक भला काम किया वो उतारा और तुमने ऐसी किश्ती ख़राब कर दी, और किश्ती वाले को पता भी नहीं कि क्या है, वो बाद में देखा होगा उसने कहा किश्ती टूट गई एक जगह से। तो उस वक्त तो उन्होंने कहा कि हम बाद में बताएंगे, बाद में बताया कहा कि उसमें किश्ती वाला अच्छा आदमी था, अल्लाह ताला ने चाहा कि किश्ती इसके बाद किश्ती रहे। वहाँ का जो बादशाह है वो हर नई किश्ती को कब्ज़ा कर लेता है, इसकी किश्ती नई थी और बादशाह के हरकारे आते तो किश्ती ले जाते और ये बेचारा गरीब आदमी किश्ती से मालूम हो जाता। तो हमने अल्लाह ही हुक्म से किया किश्ती तोड़ दी कि अब वो आएंगे तो देखेंगे अरे टूटी हुई है तो नहीं ले जाएंगे। अब उसको क्या मालूम कि किश्ती वाले को कि अल्लाह ताला ने वो तो रोया धोया होगा कि हमारी किश्ती ख़राब हो गई, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने उसके फ़ायदे के लिए किश्ती बचा दिया उसको। तो आता भी अपरानी ने बताया तक रोशें और खैर लगों बातें तुमको बुरी लगती हैं लेकिन उसमें तुम्हारी भलाई होती है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला बड़ी हिफाजत फरमाता है, हर शख्स की हिफाजत फरमाता है, अगर उसकी हिफाजत ना हो तो ज़िंदगी चल नहीं सकती, खतरा से घिरी हुई है। लेकिन जब मासी नाफरमानियाँ बढ़ जाएँ और बुराइयाँ बढ़ जाएँ, अल्लाह ताला की नाखुशी की बातें बढ़ जाएँ, तो फिर अल्लाह ताला की हिफाजत में भी कमी हो जाएगी। और इसीलिए आप देखें कि एक तरफ अगर मुसलमानों में ये बातें हैं तो जब कितने मसाइब से गुज़र रहे हैं, कितनी परेशानियों से गुज़र रहे हैं, सब मुसलमानों के हालात कितने परेशानी के हैं कि हर शख्स परेशान है। आप देखिए परेशानियां आम हैं और फिर पूरी उम्मत को जो परेशानियां हैं, तो ये यही नहीं है ये कि इत्तेफाकी तौर पर ऐसा हो रहा है, कोई चीज़ इत्तेफाकी नहीं है, सब ऊपर के फैसले से होती है। तो यही है कि हम जितना अल्लाह ताला के रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी अपनी बनाएंगे उसी हिसाब से हमको हिफाजत भी हासिल होगी और फ़ायदा भी हासिल होगा। कौन नहीं चाहता कि उसकी औलाद अच्छी रहे और वो तरक्की करे और कामयाब रहे और वो परेशानी मुक्त रहना हो, कौन नहीं चाहता। लेकिन अगर फिक्र नहीं करेंगे अपनी औलाद की कि वो नेक बने और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो फिर खतरात तो पेश आएंगे, फिर तमन्ना से काम नहीं चलेगा। तमन्ना अपनी जगह पर है लेकिन वाकया अपनी जगह पर है, वाकया तो वह पेश आएगा जैसे वाकया पेश आता है, यानी जैसे आदमी बेहतियाती करता है तो उसको नुकसान पहुँच जाता है, एहतियात से काम करता है तो उसको नुकसान नहीं। इस तरह जब अल्लाह को नाराज़ करने वाले आमाल होंगे तो जो रहमतें अल्लाह ताला की तरफ से और जो हिफाजतें हैं उनमें भी कमी हो जाएगी और वो नहीं होंगी। तो इस वक्त दो बातों की तरफ तो जो मैंने देना देने का मौका मिला मुझे, एक तो ये कि हमें अगली नस्ल की फिक्र करनी चाहिए कि उसको बुरी सोबत न मिले, बुरा इल्म न मिले, दोनों चीज़ें, बुरी सोबत न मिले, बुरा इल्म न मिले। इल्म के रास्ते से बुराई अच्छाई आती है और सोबत के ज़रिए से भी अच्छाई बुराई आती है, तो दोनों की फिक्र करनी पड़ेगी कि इल्म भी उसको बुरा न मिले। अब ये क्या है फिर ऐसा, आप देखिए जो मीडिया है क्या है, सिर्फ बुराइयों को पेश करना और बुराइयों को बार बार दिखाना, तो जो आदमी किसी चीज़ को बार बार देखेगा तो वो उसको उसकी अहमियत कम हो जाएगी। अखबार में अखबार पढ़िए देखिए तो बुराइयों का बस एक सिलसिला है। तो ये चीज़ आपको मसल नहीं पेश आई थी आपके वहाँ जब छोटे थे, हम छोटे थे तो इतना नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो हमारी नई नस्ल के लिए बड़े चैलेंज और बहुत खतरात हैं, तो वो खतरात के हम उन खतरात को जितना हम दूर कर सकें दूर करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि वो अच्छे बने, अच्छे बने और अच्छा उनको और तरक्की करें और खैर आफियत से रहें। अगर वो बुरे बने तो उसी लिहाज से अल्लाह ताला की तरफ से रहमत कम हो जाएगी, अच्छे बनेंगे तो अल्लाह की रहमत हासिल होगी और अपना आपका आपका जो आपकी जो तमन्ना है वो पूरी होगी। कौन नहीं चाहता कि अपनी औलाद को देखे कि वो तरक्की कर रही है और आराम से है। तो दो चीज़ों की फिक्र करनी पड़ेगी, एक तो कि उसको सोहबत अच्छी मिले, दूसरे उसको इल्मी रास्ते से भी उसको खराबियाँ न मिलें। इल्म भी ख़राबियाँ या अच्छाइयाँ दोनों इल्म के ज़रिए से हासिल होती हैं। और इसमें दावत का काम करना बहुत मुफीद है, सबसे बड़ा ज़रिया इसमें जो है दावत का काम है। दावत कहते ही हैं कि अच्छी बात की तरफ दावत दिलाना और बुरी बात से बचाने की कोशिश करना। तो दावत अपनी और अपने लोगों को भी दावत देना और उनको भी बुराइयों से बचाने की फिक्र करना और गैरों को भी, सब मुसलमान भाई भाई हैं तो हमें सारे मुसलमानों की फिक्र करनी चाहिए, अपनी औलाद की फिक्र, अपने अजीज़ा की फिक्र, सारे मुसलमानों की फिक्र कि इनका मुस्तकबिल अच्छा हो। माजी तो आपके साथ गुजर रहा है, मुस्तकबिल में मुस्तकिल होंगे तो इनका मुस्तकबिल अच्छा हो। मुस्तकबिल कब अच्छा होगा, जब इनके हालात अच्छे हों और इनको अच्छा माहौल मिले, इनको कोई समझाने वाला भी हो, कोई इनको मुतवज्जे करने वाला भी हो। समझाना मुतवज्जे करना ही दावत है, उसको अरबी में इब्लाग कहते हैं और ये मीडिया है। तो ये जो शैतानी मीडिया है, शैतान के ज़रिए से जो मीडिया, ये बहुत इस वक्त कामयाब चल रहा है। सारी दुनिया को इसने अपने लपेट में ले लिया है शैतानी मीडिया को। यानी शैतानी मीडिया का मतलब क्या है कि मीडिया वो जो कि खराबियों को रवाज दे रहा है, खराबियों को उम्दा बना के पेश कर रहा है, खराबियों को खूबसूरत बना के पेश कर रहा है कि खराबियों को देखकर आदमी खराबी न समझे बल्कि वो समझे कि ये तो अच्छी चीज़ है। और उस वहीं से फिर आदमी धोखा खा जाता है कि बुरी चीज़ को अच्छा समझने लगे तो उसके बाद जाहिर है कि नुकसान होगा। और इस तरह यही हो रहा है कि बुराइयों को अच्छा बनाकर पेश किया जा रहा है। तो हमें माहौल को भी दुरुस्त रखने की हमें ज़रूरत है ताकि हमारे भाई बहन और हमारी औलाद और हमारी नई नस्ल खतरा से महफूज रहे जो उससे खतरात पैदा होते हैं। और दूसरे ये कि दावत यानी उनको मुतवज्जे करते रहना, जिससे जिससे जिनको जिनको आदमी खैर की दावत दे और उनको मुतवज्जे करे, फ़ायदा पहुँचाए, तो अल्लाह ताला को ही पसंद है ये बात के आदमी दूसरों को खैर की तरफ मायल करे और खैर की तरफ तवज्जो दिलाए, बुराइयों से मना करे रोके, अल्लाह को ही पसंद है और उस पर अल्लाह की बड़ी रहमत होती है। और दूसरी एक बात ये भी होती है दावत के काम में, अगर आदमी खैर की तरफ बुलाता है लोगों को और बुराइयों से बचाने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसको बहुत सी रहमतों से बचा देता है। अल्लाह की रहमत उस पर ज़्यादा होती है, उसको ये फ़ायदा भी रहता है कि अल्लाह ताला की रहमत तो ज़्यादा मिलेगी। तो हम लोगों को बड़ी फिक्र की जरूरत करने की ज़रूरत है, वरना हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं। और इससे आप चाहे ये समझें हम समझें कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बस हम बचे हुए हैं, जितने ही बचे हुए हैं, लेकिन हमारे आइंदा नस्ल के लिए बहुत ख़तरा है। वो उसका क्या बनेगा, क्या होगी, वो क्या करेगी, उसके लिए भी हमें इंतज़ाम करना चाहिए कि उसकी सोहबत भी अच्छी हो और उसको उसकी मालूमात इल्म भी उसका अच्छा हो। इल्म के रास्ते से भी बुराई अच्छाई आती है और सोहबत के रास्ते से, और सोहबत माहौल से ताल्लुक़ रखती है, जैसा माहौल होगा वैसी सोहबत होगी। और इल्म जो है वो ज़ाहिर तालीम के ज़रिए से हासिल होता है। तो इन दो चीज़ों की फिक्र करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे नतायज और बहुत अच्छे हालात पेश आएंगे, और अगर इनकी तरफ से भी तवज्जो ही होगी तो फिर आइंदा हालात और ख़राब होंगे इसके उसके मुकाबले में। अल्लाह ताला हमको आप सबको फरमाएगा। बात आपसे कह रहे हैं, आप लोग जो बैठे हैं माशाल्लाह दाढ़ियाँ हैं, आप देखें काम से बैठे हैं, तो ये आप ना समझिए कि ये आइंदा वाली नस्ल ऐसे ही होगी। आप ऐसे इसलिए हैं कि आपके बाप और चाचा ने आपको इस तरह आपके लिए ऐसा इंतजाम किया कि आप ऐसे बने, लेकिन आपकी औलाद और आपकी आइंदा नस्ल है वो वैसे बने जैसे ही आप फिक्र करेंगे। आप फिक्र करेंगे तब वो अच्छी बनेगी, जो नहीं है कि आपके औलाद है तो अच्छी बन जाएगी। तो जैसे मिसाल दी कि नबी का बेटा जो ख़राब हो सकता है तो कोई दूसरा कैसे दावा कर सकता है। तो इसलिए कि फिक्र करने की ज़रूरत है कि सोहबत और ये दो चीज़ें सही हासिल हों, अच्छी हों, तो आदमी अच्छा लगे। माहौल है, अच्छे माहौल भी हैं, अच्छे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं बम्बई में, बहुत खैर मालूम होती है उन लोगों की वजह से, तो उसको कायम रहना चाहिए और उसमें इजाफा होना चाहिए। क़यामत में जब आदमी मुसीबत में मुबतला होगा उनकी बुराइयों और खराबियों की वजह से, तो कहेगा काश कि हमने फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता, उसने हमको बर्बाद किया। صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وفقنا لما تحبه وترضاه واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا. ثم يقطعوا ويقطعوا 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 ويقط हमारे खताओं और गुनाह के वाक़ में सैयाद से हमको महफूज फरमा, नतज सैयाद से हमको महफूज फरमा, ये बुरदगार खैर की सूरतें पैदा फरमा, शर की सूरतों से हिफाजत फरमा, ये बुरदगार हर तरह के खतरा से आफात से जो दीन को नुकसान पहुँचाने वाले हों, हमारे सकाफ हमारे हमारे अखलाक को नुकसान पहुँचाने वाले हों, उनसे हमारी हिफाजत होना, उनसे हमको बचा, ये बुरदगार हमारी नई नस्ल को भी दीनदार बना और उनका ऐसे हालात अता फरमा जिससे उनमें दीनी कैफियत बढ़े और वो तेरी फरमाबरदारी करें। ये बुरदगार अपनी फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमा और नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमा। ये बुरदगार इस जो तमाम की परेशानियाँ हैं उनको दूर फरमा और उनको खैर की सूरतें उनके लिए पैदा फरमा। ये बुरदगार हमको अपनी रजा के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा और अपनी रजा को हमारे लिए मकसूद हकीकी बना और उसकी तलब की कोशिश की तौफीक अता फरमा। बुरदगार हमारे हालात को दुरुस्त फरमा, बेहतर बना और उसमें जो खराबियाँ हैं उनको दूर करने की हमको तौफीक अता फरमा। और बुरदगार अपनी रजा अता फरमा, अपनी खुशनुदी अता फरमा और हमको अपनी खुशनुदी के ख़िलाफ़ कोई काम करने से बचा। ये बुरदगार हमारी सारी दुआओं को अपने फल करम से कबूल फरमा। वसल्लम अला सैयदना मुहम्मदिन वअला आलिही वसहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहम।